नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉ के लक्ष्मण ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा राष्ट्र सेवा भाव से संगठन आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता ही है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर को LPG कनेक्शन से जोड़ने का काम किया।
ये हमारी सरकार है जिसने धुएं से बीमार होती बहनों की पीड़ा समझी। भाजपा ने पूरी संवेदनशीलता के साथ हर घर को LPG गैस कनेक्शन से जोड़ने का अभियान चलाया। वर्ष 2014 तक जहां सिर्फ 14 करोड़ LPG कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष महत्वपूर्ण हैं। श्री नितिन नबीन को बधाई देते हुए श्री मोदी ने पूर्व के सभी अध्यक्षों के योगदान का अभिनंदन किया। पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके युवा नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी।
नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला। ऐसे हमारे नौजवान ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा तथा नितिन गडकरी ने उनका अभिनंदन किया। अब से थोड़ी देर में श्री नितिन नबीन अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने आज राज्य विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन में DMK सरकार द्वारा तैयार किए गए हिस्से को पढ़ने से इंकार कर दिया क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थीं। लोकभवन में कहा कि तमिलनाडु सरकार का दावा है कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जो सही नहीं है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बिना संबोधन के राज्यपाल के लौटने के कुछ देर बाद लोकभवन ने 13 सूत्री स्पष्टीकरण जारी किया। इसके अनुसार राज्यपाल का माइक बार बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। लोकभवन ने बताया कि भाषण में कई निराधार दावे और भ्रामक बयान थे, इसमें जनता से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हवाई किरायों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया। न्यायपीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। निजी विमानन कंपनियों के किराए और अन्य शुल्कों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नियामक दिशा निर्देशों हेतु जनहित याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। यूरोपीय संघ के देशों के नेता बृहस्पतिवार को एक आपातकालीन शिखर बैठक करेंगे। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ओलफ गिल ने कहा कि इस बैठक में ग्रीनलैंड हासिल करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा से जुड़े शुल्क लगाने की अमरीका की धमकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ शुल्क की धमकियों को लेकर सभी स्तरों पर वाशिंगटन के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है। यूरोपीय संघ अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय संघ शुल्क लागू होने की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन और कार्यवाही के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। जर्मनी में आयोजित होने वाली म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से भी ईरान के अधिकारियों का निमंत्रण वापस ले लिया गया है। ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनों में कई हजार लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 6वां संस्करण लद्दाख के लेह में शुरू हो गया है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हॉकी और स्केटिंग जैसे बर्फीले खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।